وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر پہنچائے اللہ تم کو کوئی نقصان تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس کو سوائے وہی. دل چاہتا ہے کہ یہ والی آیت تو ہم سب گھول کے پی لیں. گھول کے پینے کا مطلب یہ نہیں ہے واقعی ہم اس کو پانی میں گھولیں اور پی لیں, مطلب یہ اپنے اندر بٹھا لیں, ہم اس کو چاہے یاد کر لیں, ان تینوں آیتوں کو, تینوں نہیں تو کم از کم اس کو تو کر لیں. اس آیت میں وہ عقیدہ ہے جو ہمیں بار بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو ہم سب سے زیادہ بھولتے ہیں. اس لیے کہ زندگی میں نفع بھی ہے تو نقصان بھی ہے, جہاں پہ خوشی ہے تو وہاں پہ غم بھی ہیں, وہاں پہ آسانی ہے تو وہاں پہ مشکلات بھی ہیں, تکلیفیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تم کو پہنچائے کوئی نقصان تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب آپ اپنی کوئی بھی مسئلہ جو آپ کا ہے نا اس کو سامنے رکھ لیں اور یہ سوچیں کہ جو میرا مسئلہ ہے, چاہے وہ کوئی بیماری ہے چاہے کوئی اور پریشانی ہے, اگر اللہ نے یہ مجھے پریشانی دے دی تو کوئی اس کو دور کرنے والا ہے ہی نہیں, الا ہوا سوائے اس کے وہی ہے, وہی ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو پکا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے یہ ایمان, اور ہوا کی جگہ نا بہت سارے اور نام آ جاتے ہیں. آتے ہیں یا نہیں بتائیں, جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ذہن میں آتا نا فلاں اس کو دور کرے گا, فلاں کرے گا, فلاں کے پاس چلی جاؤں تو وہ ایسا کر دے گا, بہت سارے نام آ جاتے ہیں, فلاں جگہ, فلاں لوگ, فلاں پیر بابا, فلاں مزار, فلاں مشکل کشا, فلاں حاجت روا, وہ ہے جو دور کرنے والا ہے میرے اس نقصان کو. فرمایا نہیں, تو کہتی ہوں روزانہ ہمیں اس آیت کو پڑھنا چاہیے, کہیں لکھ کے ہمیں لگا لینا چاہیے اپنے سامنے, تاکہ بار بار ہمیں یہ ریمائنڈر ملتا رہے. کوئی بھی نقصان کوئی نہیں دور کر سکتا, ہمیں ہمارا کوئی پیارا ہو, ہمارا بچہ ہے, ہمارے کوئی والدین ہیں, کوئی اگر بیمار ہے, ہم پورا زور بھی لگا لیں, ہم ان سے کتنی بھی محبت کرتے ہیں پورا زور بھی لگا لیں تو ہم ان کو شفا نہیں دے سکتے. کوئی دکھ میں ہم ان کی بہت خیر خواہی کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, مگر اس کا دکھ دور نہیں کر سکتے. آپ کہتے بھی رہے نا کیا کروں اس کا, میں کس طرح میں کچھ کر دوں کہ اس کا دکھ دور ہو جائے, نہیں کر سکتے, یہ اختیار رب کو ہے. تو انسان جہاں پہ ٹوٹلی بے اختیار ہو جاتا ہے نا, بے بس ہو جاتا ہے, وہیں تو رب ہے. ہاں ایک اللہ ہے جو یہ کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود سے, وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا, کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ کے فرمایا اے لڑکے, میں نے عرض کیا حاضر ہوں, کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ تم کو یاد رکھے گا, تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے, تم امن اور عافیت اور خوشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تم کو پہچانے گا. یعنی کیا مطلب ہے کہ تم امن میں جب تمہارے پاس خوشیاں ہوں, عیش ہو نا, اس وقت تم اللہ کو یاد کرو گے, اللہ مصیبت کے وقت تمہیں یاد رکھے گا. جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو, اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو. جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم میں تقدیر اس کو لکھ چکا ہے, تقدیر کا قلم اس کو لکھ چکا ہے. اگر ساری مخلوق بھی مل کے اس کی کوشش کریں کہ تم کو فائدہ پہنچا دیں جو اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا, تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے. اور اگر وہ سارے مل کے اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچائیں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے, تو ہرگز اس پر قدرت نہیں پائیں گے. اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرو تو ایسا ضرور کر لو, اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو, کیونکہ اپنی خلاف تباہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے. یعنی جو میری مرضی کے خلاف چیزیں ہیں نا, ان کے اوپر میں اگر صبر کروں نا تو اس میں بڑی خیر ہوتی ہے, اور اس پہ صبر کرنا تو سب سے مشکل ہے. اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراغی ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ یعنی آپ یہ اس کے اندر دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سوال کرو، مدد مانگنی ہو، صرف اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ تقدیر میں جو لکھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساری مخلوق مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ نفع لکھ لیا ہے، اللہ چاہے تو چینج کر لے، کوئی اور نہیں چینج کر سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نقصان دینا چاہے کوئی، کوئی پہنچا نہیں سکتا جب تک تقدیر میں اللہ نے لکھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ اس لیے دعا بھی ہے نا، ہم یہ نماز کے بعد دعا بھی جب اذکار کرتے ہیں تو اس میں ایک ذکر ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جو تو نے دیا نا اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جو تو نے روک دیا اس کو کوئی دینے والا نہیں، کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی واضح تعلیم کے باوجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی تعلیم دیتے رہے، اس کے باوجود اس امت کا حال یہ ہے کہ خدا تو اسی کو کہتے ہیں کہ خدا ہمارا وہ اللہ ہے، لیکن ساری اتھارٹی، سارے اختیارات مخلوق کو بانٹ دیے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے نا جو مصیبت کے وقت اللہ کی بجائے اوروں کو پکارتی ہے، ان کے نام لے کے، ان کی ناموں کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد، مولا علی مدد، اور اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، اے فلاں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے تجھ کو کوئی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خیر پہنچانے میں بھی اس کو کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی، کسی سے پوچھنا نہیں کہ میں اس بندے کو خیر پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں، نہیں، اختیار اس کا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کے فیصلے وہ کرتا ہے، رزق روزی کے فیصلے وہ کرتا ہے، بھلائی برائی پہنچانے کے فیصلے وہ کرتا ہے، موت اور زندگی کے فیصلے وہ کرتا ہے، صحت اور بیماری کے فیصلے وہ کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے؟ فلاں کے پاس اور فلاں کے پاس؟ ہمیں تو سب سے پہلے سبمٹ کرنے والے ہونا چاہیے کہ ان اکون اول من اسلم، اللہ جب سارا کچھ تیرے پاس ہے، تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تو میں سب سے پہلے سبمٹ کرتی ہوں، سب سے پہلے تیرا آگے جھکتی ہوں۔ تو کیوں یہ شیطان ہمیں بھلاتا ہے؟ کیونکہ یہی چیزیں بھلا کے وہ پھر شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کیسے کراتا ہے؟ دیکھیں، جو انسان کے پر تکلیف کے، پریشانی کے، یا کوئی مصیبت، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی نا، تو وہ ایک بہت نازک ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے۔ کس لحاظ سے نازک؟ اس کے ایمان کے لحاظ سے نا، بہت سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان اس وقت بہت جلدی ٹریپ ہو جاتا ہے شیطان کے پندے میں، کہ انسان چاہتا ہے نا، میں بس اس مشکل سے کسی طرح نکل آؤں، یہ مصیبت کسی طرح ٹل جائے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، پہلے تو اللہ سے دعائیں کرنا شروع کرتا ہے۔ اب مشکل آسان ہی نہیں ہو رہی، مسئلہ ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، مصیبت ہے کہ ٹل ہی نہیں رہی، بیماری ہے کہ دور ہی نہیں ہو رہی، تو شیطان پھر آتا ہے، اور شیطان موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نا انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اچھا اب دیکھو، فلانی جگہ چلے جاؤ گے تو وہ بھی ہے، فلانا مزار بھی ہے، فلانا پیر فقیر ہیں، فلانی جگہ ہے، وہاں پہ تمہارا کام بن سکتا ہے، وہ تمہیں دے سکتے ہیں یہ چیز۔ اور انسان مردوں کے پاس جا کے وہاں دعائیں کرنے لگتا ہے، اور وہاں سے سمجھنے لگتا ہے کہ یہاں سے میری یہ مراد پوری ہوگی، مجھے اولاد یہاں سے ملے گی، مجھے رزق یہاں سے ملے گا، میری جاب کے مسئلے یہاں سے حل ہوں گے، میرا نقصان یہاں سے پورا ہوگا، مجھے شفا یہاں سے ملے گی۔ بس کوئی آ کے کہہ دیتا ہے، وہاں پہ دیکھ چڑھا دینا، بس وہاں پہ منت مانگ لو بس۔ تو قرآن پھر یہ سب کہہ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں کتنا اپوزٹ ہم چلتے ہیں نا قرآن سے، لیکن جس وقت پریشانی ہے نا، اس وقت ہی تو ٹیسٹ ہے، यही तो वो लम्हा है जिसमें अल्लाह ताला देख रहे हैं कि अब ये बंदा क्या करता है। हमने कैसे हो जाना है कि अल्लाह मैं तेरे दर पे पड़ा हूं ना, मैंने तेरा दर नहीं छोड़ना, मुझे मिलेगा तो यहीं से मिलना, देना है तो तू नहीं देना है, मैंने यहां से जाना ही नहीं, मैं उस फकीर की तरह जो एक दर पे चिमट गया। आपने देखा वो खाना काबा में दरवाजे के साथ उसके कैसे लोग चिमटे होते हैं और कैसे रो रहे होते हैं। वाकई इंसान ऐसा बन जाए अपनी जिंदगी में कि बस अल्लाह के दर पे चिमट गए तो अब इसको मैंने छोड़ना नहीं, अल्लाह तूने नहीं देना वो भी तेरा फैसला, तूने देना वो भी तेरा फैसला, मैंने नहीं इस दर से कहीं और जाना। ये है तौहीद। मगर ये कौन सी तौहीद है कि कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद अब मेरा दुख यहां से नहीं दूर हुआ तो चलो किसी और के दरवाजे पे चलती, ये कौन सी तौहीद है? ये तो ये है कि सीरियस नहीं तू ना सही, कोई और सही, और नहीं और सही, चलो जी कितने खुदा बनाए हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो याद रखें डॉक्टर नहीं शिफा दे सकता। देखिए यहाँ पे क्या है, इन यमसकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हुवा। डॉक्टर नहीं यहाँ पे आ सकता, इल्ला डॉक्टर नहीं है, इल्ला हुवा अल्लाह ही है वही। अगर वो तुम्हें कोई बीमारी देता है ना तो सिर्फ वही बीमारी को दूर कर सकता है। डॉक्टर भी अगर आपका इलाज करता है तो अल्लाह उसके हाथ में शिफा डाल देगा तो आपको शिफा मिल जाएगी, और अगर अल्लाह उसके हाथ में शिफा नहीं डालता तो डॉक्टर तो कई मरीजों को देखते हैं, सारे तो नहीं ठीक हो जाते। तो अपने अकीदे को सही करें, ये अकीदे की बात है। सहाबा कराम की जूती का तस्मा भी टूटता था ना तो अल्लाह से मांगते थे वो देगा, उनके पास नमक कम पड़ जाता था तो वो भी अल्लाह से मांगते थे कि अल्लाह ही देगा, और अल्लाह देता था। रोजी रसा भी अल्लाह है, हाजत रवा भी अल्लाह है, मुश्किल कुशा भी अल्लाह है। फिर हम यहां से क्यों एकदम अल्लाह के दर से क्यों एकदम मायूस हो जाते हैं, इसको क्यों फौरन छोड़ देते हैं? एक किसी की रिवायत आती है कि कोई एक डाकू था मशहूर, और गया एक जगह डाका मारने के लिए, तो रास्ते में जा रहा था तो एक जगह कहता कि मैं और मेरे साथी बैठे हुए थे, वहां पे हमने देखा कि खजूर के तीन दरख्त हैं, दो पे तो खूब फल आ रहा है और एक बिल्कुल खुश्क है, और एक चिड़िया बार बार आती है और फलदार दरख्तों पर ताजा खजूर अपनी चोंच में लेके उस खुश्क दरख्त पे चली जाती। तो हमें बड़ी हैरत हुई कि 10 दफा इस चिड़िया को हमने ये ले जाते देखा कि यहां से उठाती और वहां पे ले जाती। तो उसने डाकू ने कहा कि मुझे ख्याल हुआ कि मैं चढ़ के तो देखूं ये चिड़िया इस खजूर को क्या करती है। तो कहता है मैंने उस दरख्त की चोटी पे जाके देखा, वहां पे एक अंधा सांप है मुंह खोले हुए पड़ा हुआ, और ये वो चिड़िया जो है वो खजूर जो तरोताजा थी उसके मुंह में डाल देती। मुझे ये देख के इतनी इबरत हुई मैं रोने लगा, मैंने कहा मेरे मौला ये सांप जिसके मारने का हुक्म तेरे नबी ने दिया, जब ये अंधा हो गया तो तूने इसको रोजी पहुंचाने के लिए चिड़िया को मुकर्रर कर दिया, और मैं तेरा बंदा, मैं तेरी तौहीद का इकरार करने वाला, मैं लोगों को लूटने में लगा हूं। तो उसने वहीं पे तौबा कर ली, अपनी तलवार फेंक दी, और ये तौबा अल्लाह से तौबा करके और एक नेक जिंदगी की तरफ आ गई। तो रिस्क भी अल्लाह ताला पहुंचाता है। देखा कैसे अल्लाह ने हर एक के लिए रिस्क का इंतजाम किया। हमें रिस्क की मुश्किल पड़ जाए तो हम कितनी जगहों पे जाते हैं कि फलां करेगा, फलां दिलाएगा, फलाने के हाथ में है ये भी बोल देते हैं, फलाने के हाथ में है बस। अल्लाह हू अकबर। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिर्मिज़ी में कि जब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे आगे हाथ उठाता है तो मुझे शर्म आती है कि मैं इन हाथों को कैसे खाली लौटाऊं, अल्लाह को हया आती है कि मैं कैसे इनको खाली लौटा दूं। लेकिन बंदा इतना जल्दबाज है ना कि वो कहता बस इसी वक्त अगर होगा तो होगा, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूं कहीं और। ये कैसी बेमुरब्बती है। तो हम इस बात को पल्ले बांध लें, इस बात को जहन में बिठाएं, इसको रोज पढ़ें। वहुवल काहिरु फौका इबादी, और वो गलबा रखने वाला है अपने बंदों पर। और काहिर का मतलब मैंने आपको जैसे बताया, जैसे हम कहें कि कंट्रोलर है, जोर रखता है अपने बंदे पे, ये अपने सारे बंदों पर उसकी पूरी कुदरत है, पूरी कमांड है वो जो चाहे करे, जब चाहे करे, जैसा चाहे कर सकता अपनी मखलूक के साथ। तो वो इस उसकी इख्तियार की कोई शक्ल आप देखते हैं अपने ऊपर? ये तो देखे ना, जो फैसला अल्लाह ने कर रखा है ना, जो फैसला भी, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, बंदा उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये उसका कहर है, ये वो वाला कहर नहीं है जो उर्दू में बोलते हैं। हम तो इंसान इतना कमजोर है, हम अपने बोल पे भी इख्तियार नहीं रखते। बोलना कुछ चाहते हैं और स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, बोल कुछ और ही देते हैं। जागना चाहते हैं, बार हजार कोशिश कर लें, मगर नींद ऐसे घेर लेती है इंसान की, आंखें बंद होना शुरू हो जाती है, इख्तियार ही नहीं रहता। जाकर दिखाएं, अगर हम समझते हैं ना हमारा इख्तियार, हम चाहते हैं हमें भूख ना लगे, कितना भी खा लें कुछ देर बाद फिर भूख लग जाती है। अपने जिस्म पे हम समझते हैं हमारा इख्तियार है, क्या इख्तियार है आप देखें। हम चाहते हैं हमेशा हम जवान रहें, बुढ़ापा कभी ना आए, लाख क्रीमें लगा लें, इंजेक्शन लगवा लें, बुढ़ापा फिर भी आ जाता है, रुकता ही नहीं। हम चाहते हैं कभी हमारी नजर ना कमजोर हो, मगर जैसे उम्र गुजरती जाती है नजर आना कम होता जाता है, दांत गिरने लगते हैं, कमर झुकने लगती, बाल सफेद होने लगते हैं। कोई भी नहीं ये चाहता कि ये सब कुछ हो, ताकत कम होने लगती। तो इंसान तेरा तो कुछ भी नहीं है, तू तो खुद अपने ऊपर इख्तियार नहीं रखता, तू कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। वो सिर्फ छोटा सा इख्तियार जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ना, सिर्फ इतना सा कि बुराई या भलाई इनमें से कोई एक चूज कर लो। इंसान इतना ना समझ है कि इसी को टोटल इख्तियार समझ लेता कि बस हर चीज पता नहीं मेरे इख्तियार में अकड़ता फिरता है, फूलता फिरता है, और भूल जाता है कि वाहु अल काहिर फौका इबादी, वो है गलबा रखने वाला अपने बंदों पर। वो इंसान कितना पागल है, तेरा तो अपने दिल की धड़कन पे भी इख्तियार नहीं है, और किसी चीज पे इख्तियार क्या होगा, अपने जिगर फेफड़ों पे, गुर्दों पे कोई इख्तियार नहीं। ये एक फ्रीक्वेंसी तक हम अपने कानों से सुन सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं, इससे फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाए तो कानों के पर्दे फट जाए। एक हद तक रोशनी हमारी आंखों के सामने हो तो ठीक है, उससे कम हो तो नजर ही नहीं आएगा, उससे ज्यादा हो जाएगी तो अंधे हो जाएंगे। कितने कमजोर हैं, सोचें तो सही। तो फिर इंसान पे इख्तियार किसका है, उस रब का। क्या ये इख्तियार आपको महसूस होता है अपने ऊपर, होता है महसूस? अगर होता है तो फिर झुकते क्यों नहीं उसके सामने? वो हकीम उल खबीर, वो हकीम भी है खबीर भी है, उसके हर फैसले में हिकमत है और वो बाखबर है हर चीज से। कुल अय्यु शयइन अकबरु शहादा, कह दो कौन सी चीज है बड़ी शहादत में, किसकी यानी गवाही सबसे बड़ी है। अब इसके बारे में आता है कि किसी ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें तो कोई गवाही नहीं मिलती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पे, आपका गवाह कौन है? कि कोई तो हमें नहीं मिलता ऐसा कि आपको कोई गवाही देने वाला हो। हमने यहूदियों से भी पूछा, हमने नसारा से भी पूछा, उनसे भी हमने पूरी तहकीक की, पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं आपकी गवाही देने को तैयार है, कोई भी नहीं कहता कि आप रसूल हैं। तो इस पे ये आयत नाजिल हुई थी, यानी आप कह दें अल्लाह से बढ़ के किसकी गवाही हो सकती है, जिसके कब्जे में पूरा जहान है, जो हर चीज का जानने वाला है। देखिए इंसानों की गवाही तो इतनी रिलायबल नहीं ना हो सकती, हम तो भूल भी जाते हैं, हमारा तो अकल भी छोटी है, हमारे तो इल्म भी कम है। तो सबसे बड़ी गवाही जो है ना वो अल्लाह की है, उन्हें ला कह दीजिए अल्लाह की, उनसे पहले पूछें किसकी गवाही सबसे बड़ी है, और फिर खुद ही फरमाया अल्लाह की गवाही, उसकी गवाही से तो बड़ा कोई नहीं है। और फिर शहीदुम बैनी व बैनकुम, वो गवाह है मेरे और तुम्हारे दरमियान, यानी कि अल्लाह ही गवाह इस बात के ऊपर कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वही इस बात पे गवाह है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वउहिया इलैया हादल कुरआनी कुरआनु लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग, वउहिया और वही किया गया मेरी तरफ, हादल कुरआन ये कुरआन मेरी तरफ वही किया गया। क्यों वही किया गया? लिउनज़िरकुम, ताकि मैं तुम्हें डराऊं, बिही साथ इसके, किसके साथ, इस कुरान के साथ मैं तुम्हें डराऊं, वह मम बलागा, और उसको भी डराऊं जिसको ये पहुंचे, जिस तक ये कुरान पहुंच गया मैं उसको भी इंतजार कर दूं। इससे पता चला कि यानी जिस जिस तक ये कुरान पहुंचा उस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार हो गया। एक हदीस में भी आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को कुरान पहुंच गया मैं उसका नजीर हूं, मैंने मैंने उसको डरा दिया, फिर मैंने उसको वॉर्न कर दिया। नजीर, इंतजार का मतलब क्या होता है, डराना, वैसे डराना नहीं है, मतलब है वार्निंग कि देखो अगर तुमने ये काम ना छोड़े तो आखरत के दिन के अंजाम से डरो, खबरदार हो जाओ कि वहां पे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वो बहुत सख्त दिन आने वाला है, उसके अजाब से खुद को बचा लो। जो उस दिन नाकाम हो गया वो तो हमेशा का नाकाम हो गया, वो इतनी बड़ी बला है, वो दिन इतना सख्त दिन है, उससे लोगों को बताओ कि ये बुरे अंजाम से बच जाओ, ये कितनी बड़ी खैर है। कोई आपको ये बता देना कि अच्छा अगर आपने इस वेंडिंग मशीन, ये चलती नहीं है, इसमें अगर आपने ये $10 का बिल डाल दिया तो ये वापस नहीं निकलेगा, आप उसका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, देखो इसने मुझे नुकसान से बचा लिया $10 के उसके ऊपर। और एक इंसान आपको बता रहा है हमेशा के नुकसान से बचने का तरीका, और कोई परवाह नहीं है हमें, ना वो बात सुन रहे हैं, ना हम समझने की कोशिश करते हैं, ना हमें ये परवाह है कि हमने कोई बचना है उस दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए आए, फरमाया उहिया इलैया हादल कुरान, मेरे ऊपर ये कुरान इसलिए वही किया गया ताकि मैं तुम्हें वॉर्न कर दूं उस दिन से। यानी ये है मकसद कुरान के आने का कि आपको वार्निंग मिल जाए, ये ना कल को कहना कि हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें क्या पता था, अच्छा अगर हमें पता होता तो हम तो बहुत अच्छे काम करते, तो ये ताकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज ना रह जाए। फिर तुम्हें अल्लाह के नबी आज डरा रहे हैं, इस कुरान के साथ डरा रहे हैं, ये कुरान सुना के डरा रहे हैं, फिर हमें वार्निंग मिल रही है या नहीं, फिर आगे हमारी मर्जी के हम जो भी काम करते हैं, लेकिन ये कुरान हमें बताता है ना, उस दिन के आने से खबरदार करता है ना। और वह मम बलगा, और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जिन तक, जिनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिस तक भी पहुंच गया, जिस तक भी ये कुरान पहुंचे, जिसको भी पहुंचे उसको इंतजार हो गया। इसका मतलब हम तक पहुंच गया ना कुरान, अब हम भी नहीं ये कह सकते हमें तो नहीं पता था, हमारे हर एक के घर में, बुक शेल्फ में या घरों में ये कुरान पड़ा हुआ है, बड़े खूबसूरत गिलाफों में, एक से ज्यादा कॉपीज पड़ी हुई है। हम में से कोई क्यामत के दिन ये नहीं खड़ा होकर कह सकेगा अल्लाह मुझे पता ही नहीं था। जैसे कई खवातीन जब उनको कुरान की तरफ दावत दी जाती है वो कहती हैं हम तो इसीलिए नहीं कुरान पढ़ते कि अगर हमें पता चल गया तो फिर हम अमल करना पड़ेगा, तो अभी तो हमें अमल करने की जरूरत ही नहीं, हम अल्लाह को जाके कह देंगे। अच्छा अब ये सोच रही हैं कि अल्लाह को पता नहीं चल रहा इनकी बातें, मेरा ख्याल में यही सोच रही हूँ, इसलिए इतने आराम से कहती हैं। तो अगर हमने पढ़ लिया तो फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें पूछेगा हमने अमल क्यों नहीं किया, तो फिर हम क्या जवाब देंगे, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं है ताकि हम कह सकें कि अल्लाह हमें पता ही नहीं था। तो यानी अल्लाह को ये आपकी बात नहीं पता चली, उसने नहीं सुनी, यानी उसके समी और बसीर होने पे भी कोई ईमान है या नहीं, वो तो सुन रहा है ना कि ये तो वो यहूदियों वाली बात हो गई कि तुम इनको ये ना बताना वरना वो ये तुम्हारे खिलाफ क़यामत के दिन खड़े हो जाएंगे और वहां पे झगड़ेंगे, तो उनको नहीं पता कि अल्लाह सुन रहा। तो ये कुरान इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से वही किया गया मेरी तरफ ताकि मैं तुम्हें बता दूं, और जिसको ये पहुंचे यानी मैं तुम्हें पहुंचा दूं, और तुम्हारे अलावा जिसको भी ये पहुंचे उस तक भी ये कुरान यानी रहती दुनिया तक अब यही कुरान चलेगा। यानी इससे भी आपकी नबूवत का पता चलता है कि क्यामत तक के लिए वह मम बालागा जिस जिसको पहुंचे। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कुरान जो हम तक पहुंचा है ये इसका मकसद तो इंतजार था, तो हम चाहते हैं कि शायद जिंदों को तो इंतजार की जरूरत नहीं है, मुर्दों को इंतजार कर दो, उनको डरा दो, वो तो चले गए हैं आप दुनिया से, उनको आप पीछे पीछे सोचते हैं कि हम भेज देते हैं उनको ये कुरान पढ़ पढ़ के, उनको इंतजार की जरूरत है या जिंदों को जरूरत है, पहले ये बताएं, खुद अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए, किसको ज्यादा जरूरत है। अब आप मुर्दों को डराएंगे कि भाई एक दिन क्यामत का आना है उससे डर जाओ और अपने आप को सही कर लो, ये जरूरत उनको ज्यादा या आपको ज्यादा जो जिंदा बैठे, लेकिन हम जरूरत शायद उनके लिए ज्यादा समझते हैं, और इसीलिए हम अपनी जिंदगी में तो कुरान नहीं पढ़ते, मगर हम ये सोचते हैं जब हम मर जाएंगे तो पीछे से तुम भेजते रहना, तब हमें वहां पे जरूरत होगी। अल्लाह अकबर, यानी देखो हमारी अकलों को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा और सेहतमंद रखे जिसने मुझसे कोई बात सुनी फिर इसको याद रखा और याद रखने के बाद उसको उम्मत तक पहुंचा दिया, जैसे सुना था वैसे पहुंचा दिया। क्योंकि फरमाया कि बाज दफा एक आदमी खुद किसी बात को इतना नहीं समझता जितना बाद में आने वाला समझता है जिसको ये कलाम उसने पहुंचाया। नहीं, आपको नहीं पता कि आप जिसको पहुंचा रहे हैं हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा याद रखने वाला उस बात को, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इमारतुल कुरान में ये हदीस है मौजूद कि देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि जिसने आगे मेरे से बात सुनी, ये कुरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ही सुना गया ना, तो जिसने बात सुनी और इसको आगे पहुंचाया। अब ये पैगाम कौन आगे पहुंचाएगा जिसको शौक है इस दुआ को लेने का। हम बड़ों से बुजुर्गों से दुआओं लेने का शौक रखते हैं ना, तो मेरे नबी की दुआ है उसके लिए। अब जिसको शौक है नबी की दुआ लेने का वो ये काम करेगा, जो बात सुनी मेरे से एज इट इज आगे पहुंचा दी। तो अब ये पैगाम एज इट इज हर इंसान तक पहुंचाना, जितनी हम में जिस हद तक भी, जाहिर है सारी दुनिया तक तो नहीं हम पहुंचा सकते, मगर जितनी हम में ताकत है, जितनी हम में इस्तात है, जितनी भी कैपेसिटी है, इसको आगे तक पहुंचाए। रबी बिन अनस फरमाते हैं कि अब जिसके पास भी ये कुरान पहुंच जाए, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फॉलोअर है, मुत्तबे है, रसूल का मुत्तबे फॉलोअर है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो भी अल्लाह की बात लोगों को उसी तरह पहुंचाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाई, लोगों को उसी तरह अल्लाह की तरफ बुलाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, और इसी तरह डराए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया। समझ आ गई? जिसको ये कुरान पहुंच जाए अगर वाकई वो सच्चा फॉलोअर है तो ये काम करेगा। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आगे जितनी बात भी हमने पढ़ी है, जितनी भी समझी है, जितना भी हमें अभी तक इल्म मिला इस कुरान का, इसको आगे पहुंचाए। और हजरत सईद बिन जुबैर ने फरमाया कि जिस शख्स को कुरान पहुंच गया वो ऐसा हो गया जैसे इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर ली, देखिए उनसे मुलाकात कर ली, उनको देख लिया। ये कुरान जिसको भी पहुंच गया, तो इससे अंदाजा लगाइए कि जो है ना, अगर जिनको शौक होता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करती, तो अगर जियारत करनी है तो इस कुरान की तरफ आए। इन्नकुम लतशहदून अन्न मअल्लाहि आलिहतन उखरा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनसे कहें ऐ नबी, इन्नकुम लतशहदूना, क्या तहकीक तुम अलबत्ता गवाही देते हो इन सारी बातों को सुन के, इसके बाद भी क्या तुम ये कहते हो अन्ना माल्लाही कि बेशक अल्लाह के साथ आलिहतन उखरा और भी बहुत सारे इलाह हैं। आलिहा जो है ना जमा है, बहुत सारे इलाह हैं दूसरे भी, क्या अभी भी तुम ये बात कहोगे? यानी इतनी बातें सुनने के बाद भी अभी तक तुम यही सोचते हो, जबकि इसके ऊपर अल्लाह ताला ने गवाही दे दी, और उससे ज्यादा इल्म किसका हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ी गवाही किसकी हो सकती है कि अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं है। तो तुम जो भी कहो, कुल ला अशहदु, कह दीजिए मैं तो ये गवाही नहीं देता कि और कोई इलाह है। कुल इन्नमा हुआ इलाहु वाहिदु व इन्ननी बरीउ मिम्मा तुशरिकून, कह दीजिए कि बेशक वो इलाह है एक ही, और बेशक मैं बरीउ जिम्मा हूं उससे जो तुम शरीक ठहराते हो, जो तुम शिर्क करते हो ना, मैं उसे बरीउ जिम्मा हूं, मैं उस शिर्क में तुम्हारे साथ शामिल नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। और देखें शिर्क, मैंने जैसे अभी आपको बताया अभी है, शिर्क सिर्फ बुतों के सामने खड़े होने का नाम नहीं है। शिर्क जब किसी के साथ किसी से आप दुआ मांगते हैं वो भी शिर्क है, किसी के सामने सजदा करते हैं वो भी शिर्क है, किसी का भी तवाफ करते हैं, किसी जगह का भी खाना काबा के अलावा, वो भी शिर्क है। कि जो भी इबादत के सारे रिचुअल्स हैं ना, वो किसी और के लिए भी करें, किसी और के नाम की नमाज पढ़ें, वो भी शिर्क है। किसी और के नाम का रोजा रखें, वो भी शिर्क है। ये सब शिर्क की किस्में हैं। हम शिर्क सिर्फ समझते हैं अगर बुत खड़ा कर लिया, उसके सामने झुके तो बस ये शिर्क हो गया, बाकी ये जो हम सारा कर रहे हैं ये कोई शिर्क नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। शिर्क को पहचानना जरूरी है। अल्लाह ताला हमें शिर्क से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिससे वो राजी हो गया और उसके कलाम को आगे पहुंचाने वाला बना दे। अल्लाह शिर्क की तमाम अकसाम से हम सबको महफूज रखे, क्योंकि शिर्क एक वो गुनाह है जो माफ नहीं होगा, बाकी जिस गुनाह को अल्लाह चाहे माफ फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं।
قل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون